पाठ चार, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पशुचारी एवं कृषक समुदाय। इस पाठ में हम सिंध क्षेत्र के बाहर की पशुचारी एवं ग्राम संस्कृतियाँ सुनेंगे। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, सैंधव सभ्यता नगरीय थी, अतः इसके पतन के साथ मुख्यतः नगरीय तत्वों जैसे नगर नियोजन, भव्य भवन, भार माप के पैमानों, लिपि आदि का ही अंत हुआ। इसके विपरीत ग्राम्य जीवन से संबंधित तत्व जैसे खेत जोतने की पद्धति, भार ढोने के साधन यथा बैलगाड़ियाँ, लोक विश्वास, प्रथाएँ आदि अवशिष्ट रहे। परिणाम स्वरूप हमें भारत में सिंध क्षेत्र से बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक कहा गया है, क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे, जिनका प्रमुख उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। इन्हें पशुचारी एवं कृषक समुदाय, पास्टोरल एंड एग्रेनियन कम्युनिटी कहा जा सकता है। वे जिन क्षेत्रों में निवास करते थे, वहाँ पर्वतीय भूमि एवं नदियाँ थी। ग्रामीण एवं पशुचारी समाज की बस्तियाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में दिखाई देती है। इनके निवासियों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों के आधार पर इन्हें जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उत्खनित स्थल हैं, वे हैं आहाड़, गिलुंड तथा बाड़ाथल। आहाड़ जो उदयपुर जिले में स्थित है तथा गिलुंड जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चूँकि बनास नदी घाटी में स्थित है, इस कारण इस संस्कृति को आहाड़ अथवा बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ संस्कृति का एक अन्य स्थल बाड़ाथल भी है, जो उदयपुर जिले में ही स्थित है तथा इसकी खुदाई वीएन मिश्र ने करवाई। आहाड़ तथा गिलुंड के उत्खनन से सबसे बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इस संस्कृति के लोग अपने मकान गीली मिट्टी या गारा तथा पत्थर के बनाते थे। नीम पत्थरों से भरी जाती थी तथा कभी कभी दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था। गिलुंड में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ मकानों से चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। दीवारों के निर्माण में कभी कभी लकड़ी और बांस का प्रयोग किया जाता था तथा उनके ऊपर छप्पर भी बनाए जाते थे। गिलुंड की खुदाई में स्तंभ गर्त या पोस्ट होल्स के प्रमाण भी मिले हैं। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती करते तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पशुओं को पालते थे। हिरण आदि पशुओं का शिकार भी किया जाता था। संस्कृति के लोग अपने मृदभांड चाक पर बनाते थे। कई प्रकार के भांड मिलते हैं। मुख्य भांड काले तथा लाल रंग, ब्लैक एंड रेड वेयर के हैं। कुछ पर सफ़ेद ज्यामिति आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार के मृदभांड भी मिलते हैं, किंतु इस संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा काली तथा लाल ही है, ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसका द्वितीय सहस्त्राब्दी की ग्रामीण संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलन था। आहार से पाषाण उपकरणों के स्थान पर ताम्र उपकरण सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ी, चादरें आदि मिलते हैं। इसका एक नाम ताम्बावती या तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को अपने घरों में ही पिघलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करने में निपुण थे। संभव है वे अपने तैयार ताम्र उपकरणों का पास पड़ोस में निर्यात भी करते रहे हों। 3000 ईसा पूर्व में राजस्थान तांबे का काम करने वाले शिल्पियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। तांबा खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। इसी के पास गणेश्वर नामक पुरा स्थल स्थित है, जिसकी खुदाई में बहुसंख्यक तांबे के उपकरण मिलते हैं। आहार संस्कृति का कालक्रम ईसा पूर्व 2500 से 1500 के बीच निर्धारित किया गया है। ताम्रपाषाण काल का दूसरा क्षेत्र मालवा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रमुख उत्खनन स्थल जो हैं उसमें कायथा, उज्जैन, एरण सागर, नावदा टोली तथा माहेश्वर जो खारगोन जिले में हैं। कायथा में उत्खनन कार्य VS वाकणकर ने करवाया था। यहाँ से तीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, कायथा, आहार तथा मालवा। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल नावदा टोली है। यह सबसे विस्तृत स्थल है जिसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा करवाया गया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं, जिनका उत्खनन कर अनेक सामग्रियां प्रकाशित की गई हैं। इनमें जोरवे, निवासा, दायमाबाद जो अहमदनगर जिले में स्थित हैं, चांदोली, सोनेगांव, इनामगांव जो पुणे जिले में हैं तथा नासिक हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि जोरवे जो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है ही इसका प्रतिनिधि स्थल है। यह मालवा संस्कृति से भी प्रभावित है। यह संस्कृति महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस संस्कृति के लोग एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड चाक पर तैयार करते थे, जिन पर लाल रंग का लेप लगाया गया है तथा काली चित्रकारियां हैं। इनमें टोटीदार जलपात एवं गोड़ीदार कटोरा प्रमुख हैं। इनाम गांव से नारी तथा वृषभ की मूर्तियां मिलती हैं, जिनका समीकरण माता देवी से किया जा सकता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विस्तार पश्चिमी बंगाल के बीरभूम, बर्दवान, मिदनापुर आदि में दिखाई देता है। यहाँ के प्रमुख उत्खनन स्थल पांडुराजा ढीबी महिशाल हैं। यहाँ से मुख्यतः चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह तथा नवहान तथा बिहार के चिरांद, सोनपुर आदि से भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अभी इलाहाबाद के समीप झूसी हवेलिया ग्राम की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा करवाई जा रही है। प्रोफेसर VD मिश्र की सूचना के अनुसार यहाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृति के दो चरण परिलक्षित होते हैं। पहले चरण में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि दूसरे चरण में उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ ताम्रपाषाण काल के प्रमाण मिल रहे हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में लोग आबाद थे। इस संस्कृति का काल ईसा पूर्व 1500 से 700 बताया गया है। दक्षिणी भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रसार के प्रमाण मिले हैं। कई स्थल कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच दुआब प्रदेश में स्थित हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिक्कली होल, संगनकल्लू, नागार्जुन कुंड आदि इन संस्कृतियों को सामान्यतः ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच माना जाता है। इस प्रकार ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विवरण वितरण सिंधु क्षेत्र के बाहर भारतीय भूभाग के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इनके कुछ समान अभिलक्षण दिखाई देते हैं, सभी ग्रामीण हैं। इनके निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। वे अपने मकान मिट्टी के गारे, घास फूस, बांस बल्ली आदि की सहायता से बनाते थे। आहाड़ में पत्थर के घरों तथा गिलुंड में पकी ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। मकान प्रायः आयताकार, वर्गाकार अथवा गोलाकार बनते थे। इनाम गांव से मिली मिट्टी की नारी मूर्तियों से पता चलता है कि संभवतः वे माता देवी की पूजा करते थे। राजस्थान और मालवा क्षेत्र से वृषभ मूर्तियां मिली हैं। इनसे सूचित होता है कि इसे भी धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ईसा पूर्व 2000 से इन संस्कृतियों में काले और लाल रंग के मृदभांडों का निर्माण व्यापक रूप से होने लगा था। मालवा संस्कृतियों के काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृदभांड सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भांड भी मिलते हैं। प्रमुख पात्रों में टोटीदार एवं गोड़ीदार लोटे, कटोरे, थालियां आदि हैं। बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। राजस्थान के स्थलों से विकसित ताम्रधातु उद्योग का पता चलता है। अन्य स्थलों के लोग पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों एवं अस्त्रों का प्रयोग करते थे। कुछ स्थानों से ताम्र उपकरण भी मिलते हैं। दायमाबाद से कांसे के उपकरण प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान दायमाबाद संस्कृति पर संदेह प्रभाव मानते हैं। यहाँ से बस्ती के ध्रुवीकरण एवं परिखा से आवृत होने के भी साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के निवासी पत्थर तथा तांबे के उपकरण बनाने में निपुण लगते हैं। मालवा तथा जुर्वे संस्कृति के लोग वस्त्रों की कताई बुनाई भी करते थे। वे अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के भीतर गाड़ते थे तथा उनके साथ दैनिक उपभोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे। इससे पारलौकिक जीवन में आस्था सूचित होती है। भारत के मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 1200 तक विद्यमान रहीं, जबकि जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है 7वीं सदी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहीं। ऊपरी गंगा घाटी तथा मध्य यमुना के दुआब वाले प्रदेश के विभिन्न स्थलों से एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें गैरवर्णीय गैरिक मृदभांड और चर कलर्ड पॉटरी कहा जाता है। अनेक ताम्र नदियाँ भी पाई गई हैं। गंगा यमुना दुआब से सबसे बड़ी ताम्र नदियाँ कॉपर हॉर्स मिलती हैं। इनमें दो धार वाली कुल्हाड़ियाँ, हारपून, फरसे, भाले, दुसिंगी, तलवार आदि शामिल हैं। कुछ आकृतियाँ मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। अधिकांश पुराविद गैरिक मृदभांडों तथा ताम्र नदियों को एक ही संस्कृति से संबद्ध करते हैं। इसका काल ईसा पूर्व 2000 से 1500 सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। इसके बाद की परंपरा चित्रित धूसर पात्र परंपरा की है, जिसे पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, जिसका संबंध लोहे से जोड़ा जाता है।